So I'm going to start with a sort of ceremony. Our two friends here have come all the way from Hungary. And we're very, very glad that they're with us. And it really expands what we're doing. So yesterday, Janos said that he wanted a mala. So I'm going to present him with a mala. And this is significant. We'll find out more about why it's significant as the morning goes on. So we're sitting in this particular spot. And that's partly because it's near to the two places that the Buddha went to after he was up on this hill here.
So Buddha jo hai matlab do jagah ja gaye, wo dono jagah yahan bahut hi kareeb hai, aisi jagah hum baithe hue.
So I'm going to have to deal with 2 weeks today.
So aaj main do saptah ke bare mein bolne wala hu.
Because we've only got 6 full days for our retreat, so I have to do two together.
Kyunki hamare shivir ke keval 6 din the, isliye hame thoda jaldi aage badhna padega.
So, of course, he was for a week under the Mahabodhi tree.
अर्थात एक सप्ताह वे महाबोधि वृक्ष के नीचे थे.
And then he walked up to that little hill there.
और फिर एक छोटा जो मतलब एक ये किला किला दिख रहा उस पर वे गए.
And he gazed down at the Bodhi tree with gratitude.
और बोधि वृक्ष की तरफ बड़ी कृतज्ञता के साथ वे देखते रहे.
Then, for 1 week, he just walked up and down in this place here.
और फिर एक सप्ताह के लिए फिर आगे पीछे यहाँ वे चलते रहे.
You can see there are lotuses set into the pavement.
और आप देख सकते हैं कि वहाँ पर में कुछ कमल जो है वहाँ रखे हुए हैं.
And I believe those are supposed to be the length of his stride.
और मुझे ऐसा लगता है कि उनके जो कदम की दूरी है उतने दूरी पर वे रखे हुए हैं.
Because people remember the Buddha as being very big.
और लोगों को ऐसा लगता कि बुद्ध जो है वो बहुत ही बड़े थे.
Whether he was like that, I don't know.
अब ये वैसे ही थे ये मैं नहीं जानता.
But he walked up and down, up and down.
तो यहाँ आगे पीछे वे चलते रहे.
And that went on for a week.
तो एक सप्ताह के लिए ये ऐसा चलते रहा.
Then he walked over to this area where the pink house is.
तो ये पड़ोस में जो चीज दिख रही है, जो गुलाबी मतलब घरवा दिख रहे, वहाँ वो चलते गए.
And he sat there in deep meditation for 1 week.
और एक सप्ताह के लिए गहरे ध्यान में वे वहाँ बैठे रहे.
And it's called the Ratnagar.
और उसको रत्नगर कहते हैं.
Because it was as if he was sitting in a house made of jewels.
जैसे मानो कोई रत्न का घर है, ऐसे घर में वे बैठे थे.
Now we'll see a bit more what that means as the morning progresses.
जैसे सुबह आगे बढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि इसका मतलब क्या होता है.
So first of all, there's something to notice.
तो पहली बात जो हमें ध्यान देनी चाहिए.
He has that experience under the Bodhi tree.
बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें अनुभव प्राप्त हुआ.
Then he goes up to the spot up there.
और फिर ऊपर वहाँ चढ़कर उस जगह पर भी गए.
And tremendous gratitude unfolds within him, flows within him.
और उनके भीतर बहुत ही ऐसी कृतज्ञता का जो भाव है वो निर्माण हुआ, बहने लगा.
Then he walks up and down.
और फिर आगे पीछे यहाँ चलने लगे.
Then he sits in deep meditation as if he's in a house of jewels.
और जैसे ही मानो रत्नों का एक घर हो, उसके अंदर बहुत ही गहरे ध्यान में वे बैठे रहे.
So what does this mean? What's happening?
तो एक क्या कुछ हो रहा है, इसका क्या अर्थ होता है?
Well, of course, it's very difficult for us to say.
अर्थात हमारे लिए ये कहना बहुत ही कठिन है.
Because our minds are so different to the Buddha's mind.
क्योंकि बुद्ध का जो मन है उससे हमारा मन बहुत ही भिन्न है, अलग है.
It's as if our minds work according to different laws than the Buddha's mind.
तो बुद्ध का जो मन है उस मन के तुलना में हमारा मन जो है वो अलग नियमों से चलता है.
Our minds are dominated by the law of karma.
हमारा मन जो है जो निचले स्तर के जो कर्म है उससे बड़ा प्रभावित है.
What we experience now is the consequence of what we've done in the past.
तो अभी जो भी हम अनुभव कर रहे हैं हमने विगत में जो भी कर्म किया है उसका ये परिणाम है.
I don't mean what we experience outside.
तो मेरा ऐसा कहना नहीं कि बाहर में जो भी हम मतलब अनुभव कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ.
But I mean the kind of mind you've got.
तो हमारा जो मन जिस प्रकार से हमें मिला है मैं उसकी बात कर रहा हूँ.
Look, the mind you've got now is the mind you've created in your past actions.
अभी आपका जो मन है तो गत काल में जो भी आपने कर्म किया है उसका परिणाम के स्वरूप अभी का अपना मन बना हुआ है.
Now you get some experience of this with meditation.
तो जब आप ध्यान करते हैं तब इसका कुछ अनुभव आपको मिलता है.
You make a positive effort.
आप कुछ सकारात्मक प्रयास करते हैं.
You make an effort to develop maitri.
आप मैत्री विकास करने का प्रयास करते हैं.
You make an effort to develop concentration.
आप एकाग्रता बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं.
Yesterday we were developing gratitude.
कल हमने कृतज्ञता जो है उसको बढ़ाने का प्रयास किया.
And well, what is the result?
फिर इसका परिणाम क्या है?
After some time, you feel happier, better, clearer.
और कुछ समय के पश्चात आपको अधिक सुख लगता है, अधिक बेहतर लगता है, अधिक आप स्पष्ट होते हैं.
You know, it doesn't happen immediately. I know.
मैं जानता हूँ कि ये तुरंत होता नहीं है.
But I imagine that everybody feels somewhat brighter, somewhat happier. For these two or three days.
और मैं जानता हूँ कि पिछले दो तीन दिनों में हम अधिक सुखी अधिक मतलब अच्छा महसूस कर रहे हैं बेहतर महसूस कर रहे हैं.
That is under the law of karma.
तो ये कर्म नियम है.
You know that everything obeys laws.
आप जानते हैं कि सभी लोग जो है जो भी नियम है या कानून है उसको मानते हैं.
This is what the Buddha saw under the Bodhi tree.
और बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध ने यही बात को देखा.
He saw that everything arises independent on conditions.
तो उन्होंने देखा कि जो भी चीजें हैं वो संस्कारिता से निर्माण होती है.
So everything is governed by laws, by principles.
तो जो भी नियम है तत्व है उससे सभी चीजें चलते रहती हैं.
For instance, this it's governed by the law of gravity.
अभी जैसे ये है ये जो गुरुत्वाकर्षण है उसके नियम से चलता है.
Every time I drop this, it will go to the ground.
तो जब जब मैं इसको मैं छोड़ूंगा ये जमीन पर नीचे आएगा.
Of course, if some wind carries it, that will be other laws.
अगर मानो कोई हवा का झोंका आता है और उसको लेके बहता है तो फिर एक दूसरा नियम ये बन जाएगा.
But yes, everything obeys laws.
तो हर एक चीज नियम से चलती रहती है.
So our own happiness or unhappiness, the state, the condition of our minds also obeys laws.
तो हमारा जो भी सुख है हमारा दुख है हमारे मन की अवस्था है ये सारे नियमों से चल रहा है.
What your mind is like is governed by what you've done in the past.
अभी जिस प्रकार से आपका मन है तो जो भी गतकाल में आपने किया है उसका ये परिणाम है उसके वजह से ये बना है.
You see this with study.
तो जैसे अभी हम अभ्यास के रूप में भी इसको देख सकते हैं.
To begin with, when you study, your mind is quite heavy.
तो जब आप अभ्यास करते हैं तो आपका मन जरा सा भारी हो जाता है.
If you're a teacher, you see sometimes your pupils, their minds are quite thick.
अभी जैसे आप शिक्षक हैं तो आप देखते हैं कि आपके विद्यार्थी उनका जो मन है थोड़ा सा मतलब भारी रहता है.
But as you exercise the mind in study, it becomes more fluid, more elastic.
अभी जब आप अभ्यास अधिक करते हैं उसका अधिक अध्ययन करते हैं तो आपका मन अधिक लचीला होता है अधिक सहज होता है.
Visiting Janos and Tibor's school in Hungary, I've seen over a period of years some people really change.
और मैंने जो ज्ञानोश है टिबोर उनकी जो पाठशाला है वहाँ मैं गया और देखा कि कुछ विद्यार्थी जो है अभी उसमें बड़ा परिवर्तन आ रहा है.
Some of the people coming along have hardly any education at all.
तो जो वहाँ कुछ लोग आ रहे थे तो शायद ही कोई शिक्षा उनको मिली थी पहले.
They dropped out of the school system or they rejected by the school system when they were very small.
जब वो बहुत ही छोटे थे तो एक तो उन्होंने शाला छोड़ दी थी या उनको शाला से निकाल दिया था.
And the skill of our friends is to catch them and draw them into education.
तो हमारे मित्रों का कौशल ये है कि वे उनको ढूंढ के निकालते हैं और उनको शिक्षा देने के लिए प्रयास करते हैं.
And you see them becoming more intelligent, more sensitive, more capable of communication.
और फिर आप देखते हैं कि वो बहुत ही अपनी क्षमता निर्माण कर रहे हैं, वो बुद्धिमान बन रहे हैं और उनमें काफी अच्छी बातें पैदा हो रही हैं।
Partly through the education,
तो ये शिक्षा की वजह से होता है।
And partly through the kalyana mitrata of our friends,
और उसी प्रकार से हमारे मित्रों की जो उनको कल्याण मित्रता मिलती है उससे ये होता है।
That's karma at work.
तो कर्म इस प्रकार से यह कार्य कर रहा है।
They make some effort, but there's a good result.
तो वे कुछ प्रयास कर रहे हैं, उसका कुछ अच्छा परिणाम निकल रहा है।
You can see the opposite happening sometimes too.
कभी-कभी इसके विरुद्ध कुछ बातें होते हुए भी आप देख सकते हैं।
I remember when I was at university, I had some friends then.
अभी जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ता था, तो मेरे कुछ वहाँ मित्र थे।
And well, they started to take drugs.
अब उन्होंने कुछ मतलब जो नशीली चीजें हैं वो लेना शुरू कर दिया।
And gradually they got into a worse and worse mental state.
और फिर धीरे धीरे बहुत ही बुरी ऐसी मनोवस्था में वे चले गए।
So it went downward.
तो एक प्रकार से वो नीचे जाने लगे।
Because they were making their minds worse and worse.
क्योंकि वे अपने मन को और भी बुरा बनाने लगे।
And well, that's karma again.
तो ये भी एक प्रकार से कर्म है।
So our minds are dominated by karma.
तो हमारा जो मन है वो कर्म से बहुत ही प्रभावित है।
They're dominated by the skillful actions or unskillful actions that we perform.
तो जो भी हम कुशल या अकुशल कर्म करते हैं इससे ये मन प्रभावित होता है।
If we act skillfully, our minds will become better minds.
अगर हम कुशल कर्म करते हैं तो हमारा मन बेहतर मन बन जाता है।
If we act unskillfully, our minds will become coarser, more unhappy.
अगर हम अकुशल कर्म करते हैं तो बहुत ही दुख में चले जाएगा, बहुत ही मतलब उसकी अवस्था अच्छी नहीं होगी।
More discontented.
बहुत ही असंतुष्ट हो रहेगा।
Sun is on my head. Our minds are dominated by karma.
तो हमारा मन जो है ये कर्म से बहुत ही प्रभावित है।
It's what we do that forms how our minds are in the future.
जो भी अभी हम कर्म करेंगे उससे ये निर्भर होता है कि भविष्य में हमारा मन कैसा रहेगा।
And much of our spiritual lives is about working with karma.
और हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है उसका बहुत सारा बात इसके लिए है कि हम कर्म के साथ कार्य करें।
Trying to create for ourselves a better mind.
हमारा बेहतर मन निर्माण करने के लिए हम कार्य करते हैं।
And we do that through skillful action.
और जो भी कुशल कर्म है ये करकर हम ऐसा अच्छा बेहतर मन बनाते हैं।
The skillful action of Shila.
तो शील के हम कुशल कर्म करते हैं।
The skillful action of samadhi.
समाधि के कुशल कर्म हम करते हैं।
The skillful action of friendship.
और मित्रता के कुशल कर्म हम करते हैं।
The skillful action of puja.
पूजा का कुशल कर्म हम करते हैं।
Skillful action of studying the dhamma.
और धम्म अभ्यास का हम कुशल कर्म करते हैं।
So as we're doing these things, we'll find our mind is recreated.
और जब ये सारी चीजें हम करते हैं तो जैसे हमारा मन पुनर्निर्माण उसका हो रहा है।
Your mind is as it is because of what you've done.
तो अभी जो कुछ आपका मन है, जो कुछ आपने किया है उसकी वजह से ऐसा है।
So the law of karma is the law that we really need to understand and work with.
तो कर्म नियम जो है तो इसको सही में समझना जरूरी है और इसके ऊपर कार्य करना जरूरी है।
We tend to think it's just an accident. I am like I am just as an accident.
तो कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि जैसे मानो एक हादसा है, अभी जैसा मैं हूँ वैसा ही मैं हूँ।
But it's not like that.
लेकिन ये ऐसा नहीं है।
We have created the mind we've got.
तो जो मन हमारे पास है उस मन की निर्मित हमने की है।
Well, of course, there are factors that are beyond us.
अर्थात कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हमारे से परे हैं।
If your body is ill, well, then your mind will be affected.
अगर आपका शरीर बीमार है तो उसका आपके मन के ऊपर असर होगा।
But how your mind appears in the future is up to you.
लेकिन भविष्य में आपका मन कैसा रहे ये आपके ऊपर निर्भर करता है।
So that's the way our minds work.
तो इस प्रकार से हमारा मन कार्य करता है।
That's what brought the Buddha to the foot of the Bodhi tree.
और यही चीज है जिसकी वजह से बुद्ध इस बोधि वृक्ष के नीचे आ गए।
That's what we need to do to get to the Bodhi tree.
और इसी वजह से हमें भी बोधि वृक्ष के नीचे जाना।
We need to perform skillful actions so our minds become ready for enlightenment.
हम ऐसे कुशल कर्म करना चाहते हैं ताकि बुद्धत्व के लिए हमारा मन तैयार हो जाए।
If you've understood this in a way you don't need to understand anything else.
अगर इतना आपने समझ लिया तो फिर और कोई दूसरी बात समझने की आपको जरूरी नहीं है.
This is the most important point to understand.
ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा मुद्दा है जो हमें समझ में आना चाहिए.
It's in our hands.
ये हमारे हाथों में है.
Our minds in the future are in our hands now.
भविष्य का जो ये मन है ये हमारे हाथों में है अभी.
Traditionally, Buddhists say that this also is what determines how your mind is in the next life.
तो पारंपरिक रूप से ही बताते हैं कि आपका जो मन है वो भविष्य में किस प्रकार से रहेगा.
How you act now determines what kind of mind you'll have in the next life.
अगर अभी किस प्रकार से आप कर्म करते हैं इससे आपका अगला जन्म कैसा रहेगा, संबंध कैसा रहेगा, ये निश्चित होता है.
It's obvious, it fits.
अभी ये बहुत ही स्पष्ट ऐसी बात है.
So we need to be working to create skillful karma.
तो हमें इस बात के लिए कार्य करना चाहिए कि हमारे कुशल कर्म हो.
Skillful actions with the body.
तो हमारे काया से हमारे कुशल कर्म हो.
Skillful actions with the tongue.
हमारे वाणी से हमारे कुशल कर्म हो.
That's the most difficult, I find.
तो मुझे ये सबसे कठिन लगता है.
Sometimes the mind is like a razor blade.
तो कभी कभी मन हमारी जैसे रेजर ब्लेड होती है.
Sorry, no, the tongue is like a razor blade.
तो हमारी जीवा जो है वो जीवा रेजर ब्लेड के समान होती है.
It cuts other people, it cuts yourself.
तो ये और लोगों को काटती है, आपको भी काटती है.
So you have to make it into what?
Feather.
A feather. That's what it came into my mind.
तो जैसे
go on.
तो जैसे वो पंख होता है, पीस होता है, उसके जैसा आपने उसको बनाना
है. Just stroking.
तो बहुत ही धीरे से वो उसको लोगों को स्पर्श करेगा.
So yes, skillful actions with the tongue.
तो हमारे जीवा से हमें कुशल कर्म करना है.
And skillful actions with the mind.
और हमारे मन से हमें कुशल कर्म करना है.
Even more difficult.
और ये उससे भी कठिन है.
Of course, skillful actions with the tongue and with the body come from skillful actions of the mind.
तो जो भी मतलब हमारी जीवा से कुशल कर्म हम करते तो हमारा शरीर और मन से ये व्यक्त होता है.
So that's what brought the Buddha here.
और यही चीज है जिस वजह से बुद्धा यहाँ आए.
Traditionally it's said that he'd been practicing skillful action for many many lifetimes.
ऐसा पारंपरिक रूप से बताया जाता है कि अनेक जन्मों से बुद्धा कुशल कर्म करते रहे.
So karma brought him here.
तो कर्म जो है उस वजह से बुद्धा यहाँ तक पहुँच गए.
But under that tree, he left karma behind.
लेकिन उस वृक्ष के नीचे कर्म भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया.
Now this is quite difficult for us to understand.
अब इस बात को समझना हमारे लिए बड़ा कठिन है.
Because we're acting with a sense of I.
क्योंकि हम जो भी कृति करते हैं, मैं हूँ, इस प्रकार से वो होती है.
And that's very important.
अब ये तो महत्वपूर्ण बात है.
It's very important we take responsibility for our actions.
तो हमारे कृति की हम जिम्मेदारी ले, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है.
This is something very positive.
ये एक प्रकार से सकारात्मक ऐसी बात है.
But the Buddha realizes that there's no fixed I.
लेकिन बुद्ध को ये अनुभूति प्राप्त हुई कि कोई पक्का ऐसा मैं या स्व नहीं है.
And he stops clinging to I.
और ये जो मैं है इससे जो चिपटे हुए वे थे पकड़ के उन्होंने रखा था वो छोड़ दिया.
You see this in your own experience.
आप अपने अनुभव में भी ये बात देख सकते हैं.
You know, Dhammashalin has the pleasure of working for me.
अभी धम्मशालीन जो है मेरे साथ काम करने का वो आनंद ले रहे हैं.
But it's not always a pleasure.
लेकिन हरदम वो आनंददायी नहीं होता है.
Sometimes I complain to him.
और कभी कभी मैं उनसे शिकायत करता हूँ.
And maybe even I tell him off.
हाँ, और कभी कभी तो मैं उनको मतलब एक प्रकार से डांट भी देता हूँ.
Often not because he's done anything wrong, but because of my mind.
लेकिन वो कोई गलती कर रहे इसलिए नहीं, वो मेरा मन वैसा होता है.
But Dhammashalin, I can see he feels oh.
और कभी कभी मैं धम्मशालीन को फिर ऐसा देखता हूँ कि बहुत वही हो गए.
Well, why does he feel upset?
फिर उनको इतना बुरा क्यों लग रहा है?
I'm afraid Dhammashalin has a little bit of a little bit of ego.
अब मुझे खेत से कहना पड़ता है कि उनका थोड़ा अहंकार है, एक मैं उनमें है.
And then when Dhammashalin does something good, which he does very often.
और कभी कभी वो बहुत अच्छा करते हैं और अक्सर वो अच्छा करते रहते हैं.
And I praise him sometimes.
और कभी मैं उनकी फिर प्रशंसा करता हूँ.
So he feels very good.
और फिर उनको बहुत अच्छा लगता है.
But that's a little bit of I again.
अब फिर से यहाँ एक मैं वहाँ है.
Now I'm talking about Dhammashalin.
अभी मैं धम्मशालीन के बारे में बात कर रहा हूँ.
Actually it's the same with me.
अब यही बात मुझे भी लागू पड़ती
है. It's the same with every one of you.
तो आप में से हर एक को ये बात लागू पड़ती है.
We're attached to I.
हम मैं से आसक्त है.
When somebody praises us, we feel big.
जब हमारी कोई प्रशंसा करता है तो हम बहुत ही बड़े महसूस करते हैं.
When somebody dispraises us, we feel small.
और जब कोई हमारी प्रशंसा नहीं करता तो हमें लगता है कि हम बहुत छोटे हैं.
That's I, ego.
तो ये मैं है, ये हमारा अहंकार है.
But you can say whatever you like to the Buddha.
अभी बुद्ध को जो आप चाहते हैं वो कह सकते हैं.
You can praise him, you can curse him.
आप बुद्ध की प्रशंसा कर सकते हैं या फिर बुद्ध को गालियां दे सकते हैं.
It doesn't make any difference to him.
तो बुद्ध को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता.
You know, there's a famous story like this.
अब इसके बारे में एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है.
Somebody came to the Buddha and cursed him.
कोई बुद्ध के पास आए और बुद्ध को गालियां दी.
So the Buddha said, just a minute, brother.
फिर बुद्ध ने कहा कि भाई एक मिनट रुक जाइए.
Before I look at what you said, let me just ask you a question.
अभी जो कुछ आप कह रहे हैं उसको देखने पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ.
If somebody gives you a present and you don't accept that present, who does it belong to?
अभी कोई आपको उपहार देना चाहता है और उपहार अगर कोई स्वीकारता नहीं तो ये उपहार किसके पास रह जाता?
So that the person had to say, well, of course it belongs to the person who gave it.
और फिर वो आदमी कहता है कि अर्थात जो आदमी देना चाहता है वो तो उसी के पास रह जाता है.
So the Buddha said, well, you just gave me a curse, I don't accept it.
फिर बुद्ध ने कहा कि आपने मुझे गालियां दी वो मैं स्वीकार नहीं करता अभी.
It still belongs to you.
अब फिर ये आपकी हो जाती है.
So he wasn't bothered.
तो बुद्ध इसकी कोई मतलब चिंता नहीं करता.
There was no ego to be shaken.
तो ऐसा कोई अहंकार नहीं उसको कोई मतलब एक प्रकार से कोई क्षति पहुंचेगी.
And then many, many people praised the Buddha.
और बहुत सारे लोग बुद्ध की प्रशंसा करते थे.
They praised him so highly.
और बहुत ही ऊंचे तरीके से उनकी प्रशंसा करते थे.
But he didn't get inflated, he didn't get puffed up.
लेकिन उससे मतलब कोई वो फूल गए नहीं या उनका कुछ अहंकार नहीं बढ़ गया.
He said, okay.
उन्हें लगा कि ठीक है.
He said, if somebody says something is true, accept it.
अगर कोई कुछ कह रहा है अगर वो सत्य है तो उसको स्वीकार कीजिए.
If it's not true, you don't have to either accept or reject. It's nothing to do with you.
अगर वो सत्य नहीं है तो उसको स्वीकारना या अस्वीकार करना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता.
So, no I.
तो यहाँ कोई मैं नहीं है.
No self clinging.
तो मैं से कोई हम चिपटे या आसक्त नहीं है.
So, no karma.
तो कर्म भी नहीं है.
So, how does the Buddha's mind work?
फिर बुद्ध का मन किस प्रकार से कार्य करता है?
It doesn't obey the law of karma.
तो कर्म नियम से कोई ये मतलब बंधा नहीं है उसको वो पालन नहीं करता.
Well, it's said that what it does is obey the law of dharma.
तो ऐसा कहा जाता है कि ये धम्म नियम से चलता है.
So that there's a law that unfolds within the Buddha's mind.
तो बुद्ध के मन में ये ऐसा मतलब नियम है जो एक प्रकार से खुलते गया.
There's a succession of highly skillful mental states.
तो एक ऊंची मानसिक अवस्था के पश्चात एक दूसरी मानसिक अवस्था ऐसे क्रमवार तरीके से निर्माण होते.
They're not even really skillful.
तो वैसे वो मतलब उतना कोई कुशल नहीं थी.
They're beyond skillful.
तो वो कुशलता के भी परे थी.
But extremely positive, very, very creative states of mind.
लेकिन मन की बहुत ही सकारात्मक बहुत ही सृजक इस प्रकार की ये अवस्था है.
So that's what we see here.
तो यही बात है जो हम यहाँ देख रहे हैं.
We're seeing these skillful states of mind, these dharma niyama states of mind unfolding in these 7 weeks.
तो ये 7 सप्ताह में ये जो मन की अवस्था है ये धर्म नियम से चल रही है और धीरे धीरे वो और अधिक अधिक सकारात्मक होते जा रहे हैं.
Under the Bodhi tree, he became free from karma.
बोधि वृक्ष के नीचे वो कर्म से भी मुक्त हो गए.
Because he just left behind all clinging, all attachment.
तो जो भी उनकी आसक्ति है जो भी उन्होंने पकड़ रखा था वो सारी चीजें उन्होंने छोड़ दी.
That's why Mara couldn't catch him.
और इसी वजह से मार उनको पकड़ नहीं सका.
Mara can only catch you when there's something to catch.
मार तभी आपको पकड़ सकता है जब कुछ पकड़ने के लिए वहाँ है.
So yes, there was nothing for Mara to catch.
मार के लिए पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा.
So yes, the Buddha was free from karma.
तो बुद्ध जो है कर्म से मुक्त हो गए.
So within him, the succession of mental states emerged that were more and more creative, dynamic.
उनके भीतर फिर ऐसी मनोवस्था जो सकारात्मक है एक के बाद एक निर्माण होते गई जो बहुत ही गतिशील है बहुत ही सृजक ऐसी है.
Beyond our understanding.
हमारे समझ के वो परे है.
First of all, there was an experience of freedom.
सबसे पहले उन्होंने विमुक्ति का अनुभव लिया.
He sat under the tree experiencing that freedom, the Vimutti Samadhi.
तो इस बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने ये विमुक्ति का अनुभव लिया, जिसको विमुक्ति साधना
समाधि
विमुक्ति समाधि कहते हैं.
Free from all hindrances, free from all restrictions.
तो सारे जो निवरण है, सारे जो बंधन है, उसे पूरी तरह से वो मुक्त हो गए.
Then he went to this little hill.
और फिर ये छोटे टीले पर वो जाके बैठे.
And he experienced a very intense gratitude arising in his mind.
और उनके मन में बहुत ही गहरा कृतज्ञता का जो भाव है वो निर्माण हो गया.
Very, very spontaneously unfolding within him.
और बड़े उत्स्फूर्त ढंग से, बहुत ही सहजता से उनके भीतर निर्माण होने लगा.
Then he walked up and down.
और फिर वो आगे पीछे यहाँ चलने लगे.
We're not really told what he was experiencing there.
अभी ये भी नहीं बताया गया कि उस समय वे क्या अनुभव कर रहे थे.
Perhaps because we can't be told. Perhaps because we can't be told.
क्योंकि हमें तो ये बताया नहीं जा सकता.
But he just walked up and down.
तो वो आगे पीछे से चलने लगे.
And what we imagine is that these very, very powerful states of mind were emerging one after the other within him.
तो बहुत ही सशक्त ऐसी जो मनोवस्था है, एक के बाद एक उनमें निर्माण होने लगी.
You know, a bit like you've had a very, very good meal.
जैसे बहुत अच्छा भोजन आपने ले लिया.
And your belly feels very full.
और आपका पेट पूरा भर गया है.
And you feel very relaxed.
और आप बहुत ही सहजता से हैं.
And you just sit enjoying that state.
और उस अवस्था को आप केवल अभी आनंद लेते हुए आप बैठे हैं.
Well, the Buddha was sort of enjoying the experience that had happened to him.
तो उनके साथ जो कुछ हुआ, उस अनुभव का केवल वे आनंद ले रहे थे.
And you can imagine that he was seeing more and more of the implications or the possibilities of what he'd seen.
और जो कुछ उन्होंने देखा, उसके क्या क्या मतलब परिणाम हो सकते हैं, उसको कैसे कैसे लागू कर सकते हैं, ये बुद्ध देखने लगे.
He was seeing all the connections.
और सारे उसके संबंध जो है वो देख सकते थे.
And he just walked up and down, experiencing his own freedom.
और आगे पीछे चलकर उनका जो भी विमुक्ति है उसका अनुभव वे ले रहे थे.
And sort of settling more deeply into it.
और अधिक अधिक उस अनुभव में वे स्थिर हो रहे थे.
You know, sometimes you can experience that with meditation.
कभी कभी आप ध्यान में ऐसा अनुभव लेते हैं.
You get into some sort of positive state.
तो एक प्रकार से कोई सकारात्मक मनोवस्था आपकी निर्माण होती है.
And then you sort of settle down into that state.
और फिर उस मनोअवस्था में आप स्थिर होने लगते हैं.
So something like that was happening with the Buddha.
और इसी प्रकार से कुछ बातें बुद्ध के साथ वहाँ हो रही थी.
And he was of course performing this this action of walking up and down.
और इस प्रकार से वो आगे पीछे चलने लगे वहाँ पर में.
And this brings me to Janosch's mala.
और ये चीज जो है, तो ज्ञानोश को जो माला मैंने दी है वहाँ तक भी मैं आता हूँ.
Because well, you'll have seen people walking round and round here.
तो आपने लोगों को देखा होगा कि लोग यहाँ पर में गोल ऐसे चल रहे हैं.
And many of them, the Tibetans particularly, will be counting on their mala.
और खासकर तिब्बतन जो लोग हैं, आपने देखा होगा कि अपनी मालाओं को इस प्रकार से वो गिन रहे हैं.
And they'll be saying a mantra to themselves.
और वो अपने मन में कुछ मंत्र का पठन कर रहे हैं.
And they'll be saying it over and over and over.
और बार 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 वो उस मंत्र को दोहरा रहे हैं.
And they'll just be counting each mantra as they go around.
और जैसे एक मंत्र हो गया तो इसी प्रकार से वो उसको गिनती शुरू रहती है.
And usually there's a tradition that you say 108.
और पारंपरिक रूप से कहा जाता है कि 108 बार आप उसको कहते हैं.
And there are 108 beads on that mala.
और ये जो माला है उसमें 108 ऐसे मणि.
If there are less, I want my money back.
अगर उसमें कम है तो वो उसको वापस ले लें.
But yes, there are usually 108.
तो अक्सर मतलब 108 उसमें होते हैं.
So yes, people are walking round and round saying a mantra.
तो लोग यहाँ गोल घूम रहे हैं इस प्रकार से और मंत्रों को वो पठन कर रहे हैं.
Of course, the mantra that we know best is Om Mani Padme Hum.
और अर्थात ऐसा मंत्र जो हम भली भांति जानते हैं वो है Om Mani Padme Hum.
And this was a mantra that Baba Sahib himself used.
और ये मंत्र है जो बाबा साहेब स्वयं उसका इस्तेमाल करते थे.
And Baba Sahib himself used a mala like that.
और बाबा साहब ने स्वयं भी ऐसी माला का प्रयोग किया.
In the mornings, he would do some yoga, and then he would sit and meditate.
तो सुबह वो कुछ योगा करते थे, उसके बाद बैठकर वे ध्यान करते थे.
And sometimes he would be saying Om Mani Padme Hum.
और कभी कभी वे ओम मणि पद्मे हूँ इसका पठन करते.
It's got nothing to do with Hindu mandir.
हिंदू मंदिर से उनका कोई लेना देना नहीं.
They use mantras too, of course.
अर्थात वे लोग भी मंत्र का पठन करते हैं.
But in their case, what they're doing is some sort of jadu.
तो उनके तरीके से अगर देखा जाए तो एक प्रकार कोई जादू करते हैं.
They're trying to call, you know, some god.
कोई ईश्वर को मतलब वो प्रकट होने के लिए कहते हैं.
But what we're trying to do is to get in contact with the qualities of enlightenment.
लेकिन हम क्या प्रयास कर रहे हैं कि बुद्धत्व के जो गुण है उनके उनको लाने का प्रयास कर रहे हैं.
So when you're saying Om Mani Padme Hum, you're trying to get in contact with the quality of enlightenment, which is compassion.
तो जब आप ओम मणि पद्म हूँ कहते हैं तो जो बुद्धत्व का जो गुण है इसका करुणा उसके साथ आप जुड़ते हैं.
Because in the Buddha's mind, compassion unfolds naturally, spontaneously.
क्योंकि बुद्ध के मन में बहुत ही स्वाभाविक रूप से सहजता से करुणा जो है वो खिलने लगी.
So when you're walking up and down or walking round and round, in a way, you're doing what the Buddha did here.
तो जब आप इस प्रकार से गोल गोल घूमते हैं या आगे पीछे चलते हैं तो जो बुद्ध ने यहाँ किया वही बात आप करते हैं.
If you're saying a mantra, you're concentrating on the qualities of Buddhahood.
और जब आप मंत्र का पठन करते हैं तो जो बुद्ध के गुण है या बुद्धत्व के गुण है उसके ऊपर आप एकाग्र होते हैं.
And that's what the Buddha was doing here.
और यही बात बुद्ध यहाँ कर रहे हैं.
In the Buddha's case, they were unfolding naturally.
लेकिन बुद्ध के बारे में अगर देखा जाए तो बड़े स्वाभाविक रूप से बातें उनकी मतलब निर्माण हो रही.
He didn't need to make any effort.
उन्हें कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं थी.
It happened quite spontaneously.
तो बहुत ही उत्स्फूर्त बहुत ही सहजता से ये बात हो रही.
But we make a deliberate effort.
लेकिन हमें जानबूझकर प्रयास करना पड़ता है.
That's why we use a mala, just to keep our minds on the topic.
तो जो विषय है हमारा विषय पे हमारा मन बना रहे इसलिए हम माला का प्रयोग करते हैं.
And that's why we say Om Mani Padme Hum.
और इसीलिए हम ओम मणि पद्मे हूँ कहते हैं.
That connects us with that quality of enlightenment.
तो बुद्धत्व का ये जो गुण है उसके साथ हम इससे जुड़ जाते हैं.
So today I'd like us to do quite a lot of walking.
तो आज मैं चाहूंगा कि हम अधिक से अधिक मतलब कुछ यहाँ पर में चले.
Janosch gave me this idea yesterday. He was saying it was better than sitting with so much noise.
तो ज्ञानेश जो है उन्होंने ये एक बात बताई कि बैठने से बेहतर ज्यादा है कि हम चले क्योंकि वहाँ बहुत सारा मतलब आवाज आते रहती है.
And if it does, if the noise gets too much, just get up and walk round.
और अगर आवाज बहुत बढ़ जाती है आसपास में तो फिर आप खड़े हो जाइए और यहाँ चलने लगे.
And if you want to, you can just say to yourself, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum.
और अगर आप चाहे तो फिर अपने मन में आप कह सकते हैं ओम मणि पद्मे हूँ.
And reflect on the quality of compassion.
और करुणा का ये जो गुण है इसके ऊपर आप चिंतन कर सकते हैं.
You can say something else if you want.
अगर आप चाहे तो और कुछ दूसरा कह सकते हैं.
The Theravadins will often say Buddho, Buddho, Buddho.
तो जो थेरवादीन है वो बुद्धो बुद्धो इस प्रकार से कहते हैं.
Sometimes they'll say Buddh as they're breathing out. Oh, sorry, Buddh as they're breathing in, Ho as they're breathing out.
तो
बुद्धो
बुद्धो
सॉरी या
तो सांस जब अंदर लेते तो बू कहेंगे और फिर बाद में सांस जब छोड़ते धो कहेंगे. बुद्धो ऐसा
बुद्धो बुद्धो लाइक दैट
इस प्रकार से.
सो यू कुड जस्ट वॉक वेरी स्लोली जस्ट सेइंग बुद्धो बुद्धो दैट्स राइट.
तो इस प्रकार से चलते हुए आप बुद्धो कह सकते हैं.
Whatever you like.
तो जो भी आप चाहते हैं वैसा कर सकते हैं.
But you just allow the qualities of enlightenment to unfold in your mind.
तो आपके मन में बुद्ध के जो मतलब बुद्धत्व के जो गुण है वो निर्माण होने के लिए आप एक प्रकार से कोशिश करते हैं.
Let them affect you.
तो उनका आपके ऊपर असर होने दीजिए.
And this kind of walking meditation is very common in Buddha Dhamma.
और बुद्ध धर्म में ये जो वॉकिंग मेडिटेशन होता है ये बहुत ही सर्वसामान्य रूप से आप देख सकते हैं.
You can do it under any circumstances quite easily.
और कोई भी परिस्थिति हो बड़े आसानी से ये बात आप कर सकते हैं.
So if you can't meditate easily sitting down, walk up and down.
अगर आप बैठकर आसानी से ध्यान नहीं कर सकते तो फिर आप आगे पीछे चलकर इस प्रकार से कर सकते हैं.
And just try to be aware of your movements.
तो आपकी जो भी मतलब हलचल होती है उसके बारे में आप जागरूक रहिए.
एक्सपीरियंस योर फीट वॉकिंग ऑन द ग्राउंड.
और जमीन पर आपके पैर चल रहे हैं उसको आप अनुभव करते हैं.
एंड यस यू कुड रिफ्लेक्ट ऑन अ मंत्र और ऑन द बुद्धा.
आप मंत्र के ऊपर चिंतन कर सकते हैं या बुद्ध के ऊपर चिंतन कर सकते हैं.
यू कुड से नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स.
आप ये भी कह सकते हैं
ओ बुद्धं शरणं गच्छामि. व्हाटएवर.
तो जो भी आप चाहें.
व्हाटएवर ब्रिंग्स योर माइंड टू द बुद्धा.
तो बुद्ध की तरफ जो भी चीज आपका मन ले जाता है वो आप कर सकते हैं.
सो ड्यूरिंग द डे whenever you don't feel like sitting and concentrating, just get up, walk round and round, and to yourself just chant.
जब आपको लगता है कि अभी आप बैठकर नहीं करना चाहते, एकाग्र नहीं हो रहे, तो आप चक्रमण करते हुए ये जो है इसका पठन कर सकते हैं.
Or you can say it out loud.
या फिर आपको जोर से भी इसको बोलते हुए आप चल सकते हैं.
You'll make the Tibetans very, very happy.
और तिब्बतन जो लोग हैं उनको इससे बड़ी खुशी होगी.
Because they have very strong feeling for Om Mani Padme Hum.
क्योंकि Om Mani Padme Hum उसके बारे में उनकी बहुत ही गहरी भावना है.
You see all around the top of the railing there those money wheels.
ये जो रेलिंग आप देख रहे हैं तो ये वहाँ पर मैं अपने चक्र देखा होगा, व्हील देखा होगा.
So they've got Om Mani Padme Hum on them.
और उसके ऊपर Om Mani Padme Hum लिखा हुआ है.
And the idea is that when you turn those, you're making that mantra sort of revolve.
और उसके पीछे कल्पना ये है कि जब उसको आप गोल घुमाते हैं जैसे मानो वो मंत्र जो है वो चलने लगता है.
But the main thing, of course, is that you're focusing on the quality that the mantra indicates.
लेकिन मुख्य बात यह है कि ये मंत्र जिस बात को दर्शाता है वो जो गुण है उसके तरफ आप ध्यान देते हैं.
So that's the Buddha walking up and down there.
तो बुद्ध यहाँ आगे पीछे चलते हैं.
The Buddha contemplating his own enlightenment.
तो बुद्ध अपने बुद्धत्व के ऊपर चिंतन करते हैं.
The Buddha contemplating the states that are arising under the Dhamma Niyama.
और धम्म नियम के अंतर्गत उनकी जो अवस्था जो निर्माण हो रही है उसको वो अनुभव कर रहे हैं.
The Buddha going deeper and deeper into enlightenment.
और बुद्धत्व के और भी गहराई में बुद्ध जा रहे हैं.
And that's what you do when you walk round.
और यही बात जब आप ऐसा चक्रमण करते हैं तो यही बात आप करेंगे.
You're this side of enlightenment.
तो आप बुद्धत्व के इस ओर है.
He's that side of enlightenment.
और बुद्धत्व के उस ओर बुद्ध है.
But you meet at that point.
तो इस बिंदु पे लेकिन आप मिलते हैं.
So yes, today let's use the walking as a way of connecting with the Buddha.
तो आज हम मतलब चलकर बुद्ध से जुड़ने के लिए प्रयास करेंगे, जुड़ने के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे.
Really you should say 108 mantras 108 times.
तो 108 बार आप ये मंत्र का पठन कर सकते हैं.
What's that? 100 and I can't do the mathematics. Rohit? No. 108 times 108. A lot. 100,000. 100,000 times. So, the Buddha walked up and down.
तो बुद्धा आगे पीछे चलने लगे.
And then you can imagine him just walking through the trees.
और आप कल्पना कीजिए कि वो वृक्षों से वो चल के आ रहे हैं.
And arriving at a tree somewhere over there.
और फिर वहाँ कोई एक पेड़ है वहाँ तक वे पहुँच गए.
And he just sat down.
और फिर वहाँ वे बैठे.
And he went into a very, very deep state of meditation.
और बहुत ही गहरे ऐसे ध्यान की अवस्था में वे चले गए.
It said that the whole universe became clear to him.
और ऐसा कहा जाता है कि सारा जो विश्व है उनके लिए पूरी तरह से स्पष्ट हो गया.
It's as if he was exploring every corner of his experience.
जैसे मानो उनके अनुभव का हर एक कोना जैसे वो उसको देख रहे हैं.
And he had this sense of being inside a hut made of jewels.
और फिर जैसे मानो एक ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि ऐसी एक कुटी है वो पूरी मतलब रत्नों से बनी हुई है.
Now again, I don't imagine that those jewels were visible to anybody else.
और मैं कल्पना कर सकता हूँ कि ये जो रत्न है औरों को सही में वो दिख सकते या नहीं.
Although I don't know, I wasn't there.
तो मैं वहाँ तो नहीं था, मालूम नहीं मुझे.
But at the very least, you can imagine that was a way of talking about what he experienced.
तो एक प्रकार से उनका जो भी अनुभव है उस अनुभव को बताने का एक तरीका है.
A house is something that protects you.
तो,
you.
तो घर एक ऐसी चीज होती है जो आपकी सुरक्षा करती है.
It shelters you.
हाँ, आपको एक प्रकार का आसरा देती है.
And well, he was sheltered by this surrounding of jewels.
तो ये जो उनके इर्द-गिर्द मतलब रत्न थे, वो रत्न उनको एक प्रकार से आसरा दे रहे थे.
You very often find jewels used to express what is experienced in meditation.
तो ध्यान में जो अनुभव आता है, तो अक्सर मतलब रत्न का आधार लेकर उस अनुभव को बताया जाता है.
Now, I don't imagine that many of you have seen many jewels.
अभी मैं कल्पना नहीं कर सकता कि आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी रत्न देखे होंगे.
You need quite a lot of money to have jewels.
तो रत्न होने के लिए आपको बहुत पैसा चाहिए.
But I remember when I was a child going to visit the Tower of London.
तो जब मैं छोटा था तो मुझे याद पड़ता है कि टावर ऑफ जो लंदन है वहाँ मैं गया.
And in the Tower of London there was a house where the Queen's jewels were kept.
और वो टावर ऑफ लंदन में एक ऐसा घर है जहाँ रानी के जो रत्न है वो वहाँ रखे हुए.
I'm afraid some of them were stolen from India.
और मुझे खेद से कहना पड़ता है कि उसमें के कुछ भारत से चुराए हुए हैं.
Personally, I think they should be given back, but I'm not the king.
अभी व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि उसको तो लौटा देना चाहिए, लेकिन मैं राजा नहीं
हूँ. Many people feel they should be given back.
लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा लगता है कि उनको लौटा देना चाहिए.
But I remember seeing the Kohinoor.
लेकिन मुझे याद पड़ता है कि मैंने कोहिनूर देखा.
The Kohinoor was the crown jewel of the Maharaja Maharana of Punjab.
पंजाब के जो महाराणा है उनका जो मुकुट है वो मुकुट में कोहिनूर था.
But when the British defeated the Sikhs, they took that back to England.
लेकिन जब ब्रिटिश लोगों ने उनको हराया तो ये जो है रत्न वो इंग्लैंड ब्रिटेन में वापस ले गए.
It's a big diamond.
ये बहुत बड़ा एक हीरा है, रत्न है.
And in those days you could look at it quite closely.
और उन दिनों में इसको काफी करीब से आप देख सकते थे.
But since then they've made very big thick glass and so on.
अभी लेकिन बाद में उन्होंने बहुत ही ऐसे मोटे मोटे कांच वा लगा के रखे.
And I remember seeing that big jewel. I can remember it to this day.
और अभी भी मैं याद कर सकता हूँ कि वो बड़ा रत्न मैंने वहाँ देखा था.
A diamond is not like glass.
तो ये जो रत्न होता है ये कोई कांच जैसा नहीं होता.
It's very very pure.
बहुत ही ऐसा शुद्ध होता है.
And when you look into the center of the jewel, which is cut with facets,
तो जैसे मतलब उसको पहलू गिरा जाए, उसको काटा जाता है, उसके केंद्र में जब आप देखते हैं,
you see fire inside.
तो अंदर में उसको आपको अग्नि दिखाई देता है.
And you see colors flashing inside.
और आपको ऐसा दिखता है कि अंदर में जो रंग है जैसे मानो वो प्रकाशमान हो रहे हैं.
Very very beautiful.
बहुत ही सुंदर होता है.
Very very fascinating.
और बहुत ही आकर्षित करने वाला होता
है. And you can see why people, well, they would kill for those diamonds.
अभी आप देख सकते हैं ये रत्नों के लिए लोगों ने लोगों को कैसे मार दिया.
The British conquered Punjab for that diamond.
और ब्रिटिश लोगों ने पंजाब पर विजय हासिल की केवल इस हीरे के लिए.
Don't worry, Punjab is now conquering Britain.
हाँ, अभी पंजाब जो है वो ब्रिटेन को विजय, ब्रिटेन के ऊपर विजय प्राप्त कर रहा है.
The second language of Britain is Punjabi.
हाँ, ब्रिटेन की दूसरी जो भाषा है वो भी पंजाबी है.
So, but yes, jewels, they're very, they suggest something very strange.
तो रत्न जो है कुछ अनोखी अलग ही ऐसी बात कहते हैं.
They suggest another level of experience.
तो एक अलग ही मतलब अनुभव का जो स्तर है वो दर्शाते हैं.
They don't seem to belong to this world.
ऐसा लगता है जैसे मानो इस दुनिया के वे नहीं है.
So within this world, they tell you something about the world of meditation.
तो इसी संसार में, इसी जगत में वो एक अलग जगत की बात करते हैं जो एक ध्यान का जगत है.
So you can imagine the Buddha was surrounded by this wonderful pure fire.
तो आप कल्पना कर सकते हैं कि बुद्ध जो है उनके इर्द गिर्द इस प्रकार से बहुत ही शुद्ध, इस प्रकार का जैसे मानो अग्नि जो है वो वहाँ है.
In his mind, the world, this world had just disappeared.
तो उनके मन में ये जो जगत है ये पूरी तरह से मानो लुप्त हो गया है.
And he was exploring with the outer reaches of experience.
तो अनुभव के बिल्कुल परे बाहर का जो अनुभव है वो अनुभव करने लगा.
Nothing was closed to him. Nothing was closed to him.
तो उनके करीब ऐसी दूसरी कोई बात नहीं थी.
So the jewels indicate that world that he was now inhabiting.
तो वो जो रत्न है इस बात को दिखाते हैं ऐसे जगत में वो चले गए जो जगत इस प्रकार का था.
Under the Dhamma Niyama, these experiences were coming to him.
तो धर्म नियम के अंतर्गत ऐसे अनुभव जो है वो बुद्ध प्राप्त कर रहे थे.
And we're told that his body then began to glow.
और फिर ऐसा बताया जाता है कि उनका जो शरीर है वो भी प्रकाशमान होने लगा.
Now there was nobody there to see it, so presumably what's happening is symbolic.
अभी कोई वहाँ देखने के लिए नहीं था, लेकिन जो कुछ हो रहा है ये प्रतीकात्मक है.
All these things mean something.
लेकिन ये सारी चीजों का कुछ अर्थ है.
So it's said that his body glowed with seven colors.
ऐसा कहते हैं कि उनका जो शरीर है वो सात रंगों से प्रकाशमान हो गया.
I wrote them down because I never remember them properly.
तो ठीक ढंग से उनको मैं याद नहीं करता इसलिए मैंने उनको लिख लिया है.
But they're actually here.
लेकिन वो यहाँ पर में है.
They're here on the Buddhist flag.
ये बुद्ध के जो मतलब हम पताका देख रहे हैं, ध्वज देख रहे हैं, उस पर है.
The Buddhist flag is made up of the colors that radiated from the Buddha's body when he was sitting here.
तो बुद्ध के ये जो फ्लैग है, तो ये जो रंग है जब उनके शरीर से ये सारे रंग निकल रहे थे उसके प्रतीक.
So you can imagine the Buddha just sitting there surrounded with rainbow light. That's what it seemed like.
तो जैसे मानो बुद्ध वहाँ बैठे हैं और इंद्रधनुषी जो रंग है वो रंग जैसे मानो उनमें से निकल रहा है.
I don't know, sometimes you even get some little taste of this yourself.
कभी कभी इसका थोड़ा कुछ स्वाद आप भी चख लेते हैं.
You're meditating.
आप ध्यान कर रहे हैं.
And you feel quite deeply concentrated.
और बहुत ही गहरे आप एकाग्रता में हैं.
And you feel that there's a sort of force radiating from you.
और आप देखते हैं कि जैसे मानो किसी प्रकार की एक शक्ति जो है, ऊर्जा जो है वो आप में से निकल रही है.
Especially when you're doing Maitri Vikas.
और खासकर जब मैत्री विकास आप कर रहे हो.
You feel as if there's something sort of radiating from you.
और आप ऐसा महसूस करते हैं कि ऐसी कुछ चीजें जो आप में से निकाल रही है प्रकाशमान हो रही है.
Nobody taking a photograph would see that.
अभी कोई उसको मतलब फोटोग्राफ में देख नहीं सकता.
No kind of scientific instrument would record it.
अभी कोई साइंटिफिक ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी नहीं कि जिसको वो देख सके, रिकॉर्ड कर सके.
But that's your feeling.
लेकिन ये आपके भाव होते हैं.
So the Buddha had this to the utmost degree.
तो बुद्ध का ये बहुत ही बड़े पैमाने पर ये जो बातें हैं वो होने लगी.
These wonderful colors, they weren't these colors really, were radiating from him.
तो बहुत ही अनोखे ऐसे जो रंग है वो रंग उनमें से प्रकाशमान होने लगे.
These are just our attempt on this plane to indicate what cannot be found on this earth.
तो अभी ये जो भी हमने रंग किया है तो हमने ये भी इस जगत में निकाले, लेकिन वो जो है वो बहुत ही मतलब अनोखे थे, विरले थे.
You may even have found this sometimes in meditation. You see things, but the colors that they come in, you couldn't see on this with your earthly eyes.
कभी कभी ध्यान में कुछ आप रंगों को देखते हैं, लेकिन वो ऐसे रंग होते हैं कि जो हम अपनी आंख से बाहर ऐसे रंग नहीं देख पाते.
You may imagine the Buddha.
आप बुद्ध की कल्पना कर सकते हैं.
But he's sort of glowing with light.
तो बुद्ध जो है मतलब एक प्रकार से प्रकाशमान हो रहे हैं.
So these are just a way of indicating the colors that the Buddha was radiating out from him.
तो एक प्रकार से ये रंग दर्शाते हैं कि किस प्रकार से बुद्ध जो है उनमें से इस प्रकार के प्रकाश निकल रहे थे.
Now traditionally they're given various meanings.
अभी पारंपरिक रूप से इसको अलग अलग अर्थ बताए गए हैं.
I found so many different interpretations of what they mean.
तो इनका क्या अर्थ होता है इसके अलग अलग लोगों ने बहुत सारे अर्थ बताए.
And in a way it doesn't matter.
तो वैसे ये बात कोई महत्वपूर्ण नहीं है.
They mean what they mean.
अब उनका जो अर्थ है वो अर्थ है.
You could say, what does blue mean?
अभी नीला जो है उसका अर्थ क्या होता है.
You just think of blue.
आप नीले के बारे में सोचते हैं.
What does it make you feel like?
और जब नीला आप देखते हैं तो आपको क्या महसूस होता है?
Well, I must say, for me, what I feel with blue is peace.
अभी मैं मेरे बारे में कह सकता हूँ कि जब मैं नीले के बारे में सोचता हूँ तो एक शांति मुझे महसूस होती है.
Openness.
एक खुलापन उसमें होता है.
Expansiveness.
उसमें एक बहुत ही विस्तार आपको नजर आता है.
Then, what do you feel with yellow?
और जो पीला रंग है उससे आपको क्या महसूस होता है?
Well, yellow is how can I put it? It's very attractive.
ये पीला रंग जो बड़ा आकर्षण वाला है, आकर्षित करने वाला है.
It's like gold.
ये सोने जैसा है, सुवर्ण जैसा है.
So it seems to be very, very, very rich.
जैसे बहुत ही समृद्ध है ऐसा हम देख सकते हैं.
फुल ऑफ वंडरफुल क्वालिटीज
और बहुत सारे ऐसे गुणों से भरा हुआ है.
देन रेड,
फिर लाल रंग है.
Well, to me, red means warmth.
और लाल रंग मेरे लिए एक प्रकार का मतलब एक ऊर्जा या एक प्रकार का मतलब उष्मा है.
द वॉर्म्थ ऑफ द हार्ट, द वॉर्म्थ ऑफ मैत्री.
तो मैत्री की हमारी ये उष्मता है या उष्मा है या फिर जो भी उष्मा हमारे मन में हृदय में.
व्हाइट विथ प्योरिटी.
और जो शुभ्र है वो शुद्धता से संबंधित है.
दैट्स वेरी ऑब्वियस.
अब ये तो बहुत ही स्पष्ट बात है.
देयर इज नो मिक्सचर इन व्हाइट, और रादर इट इज ऑल कलर्स बट इट्स देयर इज नो स्टेन्स ऑन इट.
तो जैसे शुभ्र जो रंग होता है उसमें कोई दूसरा रंग नहीं होता, या अगर कोई है भी तो लेकिन वो उसमें शुभ्र दिखाई देता है.
देन ऑरेंज रिमाइंड्स मी ऑफ फायर.
और फिर ये जो ऑरेंज रंग है उसको क्या बोलते हैं, नारंगी जो रंग है, तो वो मुझे अग्नि की याद दिलाता है.
वेल एंड फायर इज व्हाट बर्न्स अप.
और ये अग्नि जो है ये जला देता है.
इट क्लेंजेस, इट डिस्ट्रॉयज.
तो ये बिल्कुल शुद्ध कर देता है, साफ कर देता है, ये नष्ट कर देता है.
सो ऑरेंज इज कनेक्टेड विद रेनुंसिएशन, विद लैक ऑफ डिजायर.
तो नारंगी जो रंग है वो जो भी हम त्याग करते हैं, जो भी हमारी मतलब तृष्णा समाप्त हो रही है उससे संबंधित है.
These are my interpretations.
तो ये मैं उसको अर्थ दे रहा हूँ.
But we have to each of us see for ourselves.
लेकिन हम में से हर एक को ये स्वयं देखना पड़ेगा.
The color sort of means something.
तो रंग जो होता है उसका कुछ हमारे लिए अर्थ होता है.
And well, just see what it means.
तो देखिए कि क्या आपके लिए उसका अर्थ है.
The list that I've got here, blue is for confidence.
तो नीला रंग जो है वो आत्मविश्वास के लिए है.
Yellow is for समाधि.
और पीला रंग जो है वो समाधि के लिए है.
Red is for wisdom.
और लाल रंग जो है वो प्रज्ञा के लिए है.
White is for purity.
और शुभ्र जो रंग है, सफेद जो रंग है, वो शुद्धता के लिए है.
Orange is for lack of desire.
और नारंगी लोग जो रंग है वो हमारी किसी प्रकार की तृष्णा न होना है.
But I know at least two other lists.
लेकिन और दूसरी भी कुछ सूचियां मेरे पास है.
Because they're not really to be interpreted.
लेकिन बहुत अच्छे ढंग से उसका अर्थ नहीं बताया गया.
Blue for confidence, atmavishwas. Barwara. So yes, I can find you other lists, but for me, the main thing is you see the Buddha radiating these colours.
तो अन्य भी सूची हो सकती है, लेकिन आप देखते हैं कि बुद्ध जो है इन रंगों से एक प्रकार से प्रकाशमान है.
And these are the radiance of his qualities, of his good qualities.
तो उनके जो अच्छे सद्गुण जो है उनका ये प्रकाश वहाँ से निकल रहा है.
And the seventh, which is all five colors, sorry, the sixth is all five colors blended together.
तो छठा जो रंग है ये पांचों रंगों को जब इकट्ठा हम लोग करते हैं.
So all these good qualities of the Buddha are perfectly integrated.
तो बुद्ध के सारे जो गुण है उसको बहुत ही अच्छी तरह से एकाग्र किया गया, उसको एकरूप किया गया.
He hasn't got this quality and that quality sort of separate from each other.
तो ऐसा नहीं, ये एक अलग गुण है, ये अलग गुण है, ये एक दूसरे से जुदा नहीं है.
So there the Buddha is.
तो यहाँ बुद्ध है.
Sitting roughly where that pink house is.
वो जो गुलाबी घरवा दिख रहा है वही कहीं वो बैठे हुए हैं.
But instead of a stone house, it's a house of jewels.
तो जो पत्थर का जो घर होता है उसके बजाय वहाँ पर में रत्नों का घर है.
And these six colors, not seven as I said earlier, these six colors are radiating from him.
तो पहले मैंने सात कहे, सात नहीं तो छह रंग है जो उनमें से प्रकाशमान हो रहे हैं.
And you can imagine him there. We're really deeply exploring realms of experience completely beyond our understanding.
और फिर बड़े गहराई से अनुभव का ऐसा एक विश्व है, जगत है, जो अनुभव करे जो हमारे कल्पना के भी बहुत परे है.
And yes, we can't imagine what was happening.
हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि उस समय सही में क्या हो रहा था.
He's understanding the mind in all its depth, in all its breadth.
तो मन को पूरे गहराई से, उसके पूरे मतलब विस्तार से वो समझने लगे.
So you can see here the experience is at its peak in a way.
तो एक प्रकार से हम ऐसा कह सकते हैं कि उनका अनुभव जो है वो बिल्कुल मतलब जैसे मानो ऊंची चोटी पर पहुंच चुका है.
Under the Bodhi tree he experiences विमुक्ति, liberation.
बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने विमुक्ति का अनुभव लिया.
on the hill he experiences gratitude.
और वो जो टीला है वहाँ उन्होंने कृतज्ञता जो है उसका अनुभव लिया.
Here he's tasting, savoring the quality of his own experience.
और उनका स्वयं का जो अनुभव है वो अनुभव का वो स्वयं स्वाद चक्र है.
And here he's experiencing the limits of that.
और फिर यहाँ उसकी जो अलग मर्यादा है उस मर्यादा को वो देख रहे हैं.
Tomorrow, something very, very interesting happens.
और कल बहुत ही रोचक ऐसी बात हुई है.
But today we'll dwell with these two facets of his of the dharma niyama as it unfolds within him.
तो आज हम उनके धर्म नियम के जो दो अंग है उस अंगों को हम देखेंगे.
So for the rest of the morning, I suggest you just alternate between walking round and round, saying a mantra if you want to.
तो आप चाहे तो आज की सुबह आप चक्रमण करके घूम सकते हैं और मंत्र का पठन कर सकते हैं.
And just sitting here.
और फिर यहाँ बैठ सकते हैं.
Or visit the two places.
या फिर ये दो जो जगह है वहाँ जाकर आप आ सकते हैं.
Visit all four places.
या फिर चारों जो जगह है वो चारों जगह आप जा सकते हैं.
And just reflect on what happened in each place.
और हर एक जगह क्या हुआ उसके ऊपर आप चिंतन कीजिए.
And in that way connect more deeply with the Buddha.
और इस प्रकार से बुद्ध के साथ और भी गहराई से स्वयं को जोड़ने का प्रयास करें.
Now I said that our minds are governed by the karma niyama.
तो मैंने कहा कि हमारा मन जो है वो कर्म नियम से चलता है.
Now that's not completely true.
ये पूरी तरह से सत्य नहीं है.
The dharma niyama also works within us.
धर्म नियम भी हमें काम करता है.
It's the dharma niyama that's pulling us.
तो धर्म नियम है जो हम एक प्रकार से खींचते रहता है.
The dharma niyama pulls us towards the Buddha.
धर्म नियम हमें बुद्ध की तरफ खींचता है.
You experience it in shraddha.
तो आप श्रद्धा से आप अनुभव करते कि आप बैठे हैं.
When you feel a strong attraction to the Buddha, that's the dharma niyama pulling at you.
तो जब आप बुद्ध की तरफ बहुत ही आकर्षित होते हैं तो ये धर्म नियम है जो बुद्ध की तरफ आपको खींच रहा है.
But the dharma niyama can't take you away yet.
लेकिन धर्म नियम अभी आपको कहीं दूर नहीं ले जा सकता.
You have to do more work on your karma.
तो अभी आपको अपने कर्म पर ही अधिक कार्य करना पड़ेगा.
When you perform a lot of skillful action, you open yourself to the dharma niyama.
और जब आप अधिक कुशल कर्म करेंगे तब धर्म नियम के लिए आप स्वयं को अधिक खुला करेंगे.
Then the dharma niyama can carry you away.
और फिर ये धर्म नियम जो है वही आपको आगे बढ़ाएगा.
So while we're dwelling on the Buddha and his experience, the dharma niyama is pulling at us.
तो जब हम इस प्रकार से बुद्ध के ऊपर विचार करते हैं उनके जैसा अनुभव करने का प्रयास करते हैं तो धर्म नियम हमें उनकी तरफ खींचता है.
And the dharma niyama isn't something you will.
तो धर्म नियम है ना एक प्रकार की मतलब आपकी इच्छा होती है.
It's something you experience and allow.
तो एक ऐसी बात है जो आप अनुभव करते हैं और उसको आप आने देते हैं.
So you're listening for the dharma niyama.
तो धर्म नियम को जैसे मानो आप सुन रहे हो.
You're waiting for the dharma niyama.
तो आप जैसे धर्म नियम के लिए एक प्रकार से आप इंतजार कर रहे हो.
So during the day, just be focusing on the Buddha. Feel the pull of the dharma niyama.
तो इस दिन के दौरान आप बुद्ध के बारे में सोचिए और वो जो बुद्ध की तरफ हमारा एक प्रकार का खिंचाव है उसको देखने का प्रयास.
And as much as you can, give yourself up to that pull.
तो ये जो खिंचाव है तो जितना संभव हो सके वो बुद्ध के प्रति का जो खिंचाव है उसको आप अनुभव करते रहिए.
Nothing can go wrong.
तो इससे कुछ भी गलत नहीं होगा.
If you follow the precepts and listen to the dharma, nothing can go wrong.
अगर आप शीलों का आचरण करते हैं धर्मों को आप सुनते हैं तो कुछ भी गलत आपके साथ नहीं होगा.
So that's our task for the day.
तो आज के दिन का हमारा यही काम है.
Listening to the dharma niyama.
तो धर्म नियम को सुनना है.
Opening ourselves to the dharma niyama.
धर्म नियम के लिए स्वयं को खुला करना है.
Performing those skillful actions, those karma niyama actions that open us to the dharma niyama.
तो हमें कुशल कर्माधिकारी करना है ताकि ये कुशल कर्म धर्म नियम के लिए स्वयं को खुला कर सके.
When we walk round and round, we're with the Buddha doing the chankraman.
तो जैसे मानो हम गोल गोल या चंक्रमण करेंगे तो जैसे बुद्ध चंक्रमण कर रहे थे वैसा हम कर रहे हैं.
When we sit to meditate, we're with the Buddha in the Ratnagar.
और जब हम बैठ कर ध्यान करेंगे तो रत्नाकर में जैसे बुद्ध बैठे थे वैसा हम कर रहे हैं.
And just alternate between those two as you wish throughout the day.
और ये दोनों चीजों जो भी आप जैसा करना चाहते तो आप तय कीजिए कि आपको क्या करना है, दिन भर आप ऐसा कर सकते हैं.